ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद से अध्याय नंबर 17, माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप। श्लोक नंबर आठ, इसमें आठ नहीं दे रहा है ना, इसलिए ठीक है, आठ नंबर श्लोक। प्रायश प्रकृतश्चापि स्त्रियं राशि विभ्रति अयं महाव्रतधरो विभ्रति सदसि स्त्रियं प्रायश प्रकृतश्चापि स्त्रियं राशि विभ्रति अयं महाव्रतधरो विभर्ति सदसि स्त्रियं। शब्दार्थ बोलेंगे प्रायशः सामान्यतः प्राकृता बद्ध जीव च भी अपि यद्यपि स्त्रियं स्त्री को रहसि निर्जन स्थान में विभ्रति आलिंगन करता है अयम यह शिवजी महाव्रताधरा मान व्रतों तथा तपस्याओं का स्वामी विभर्ति भोग कर रहा है सदसी मान पुरुषों की सभा में स्त्रियं अपनी पत्नी को। तुम तात्पर्य पढ़ेंगे शिवरूपाद की कृपा के द्वारा। शिवरूपाद की प्रायशः समान पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का शवों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य महाव्रतधर शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी है जो कभी नीचे पतित नहीं होता। शिवजी की गणना श्रेष्ठ योगियों में की जाती है तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान हैं जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने रहें। अतः चित्रकेतु ने कोई अपराध नहीं किया, उसने मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामयं ददाति शुभदान्तिकं वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सगण रघुनाथम तम सजीवम साधयितम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण पादानाम सगण रीता श्री विशाखा नित्यां च नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम कई दिनों से देख रहे हैं महाराज चित्रकेतु की कथा चल रही है। तो आपने मतलब कि पहले कई स्पीकर से सुना होगा, कथावाचकों से उन्होंने महाराज चित्रकेतु बारे में जैसे वर्णन किया। तो आज है आठवां श्लोक। अभी पार्वती ने श्राप नहीं दिया है, साथ श्राप नहीं दिया है अभी। तो चित्रकेतु महाराज कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि आश्चर्य। देखिए प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं, तात्पर्य में कह रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज ने कोई अपराध नहीं किया। तात्पर्य में कहा ना प्रभुपाद जी ने, उन्होंने सिर्फ आश्चर्य, मतलब कि जैसे होता है ना कि बहुत बड़े लोग कुछ ऐसा काम करें ना जो कि बहुत घृणित हो, मतलब जो कि उसको देखकर लोग ना सीखें, मतलब कुछ गलत कार्य लोग और भी ना करें, तो उसमें थोड़ा सा कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे ये तो इतने बड़े होकर भी इतना घृणित काम कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, या और भी वगैरह वगैरह और भी कई काम होते हैं। तो वही आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं वो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी कि कोई कि मतलब कोई अपराध नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने थोड़ा तैयारी किया उस हिसाब से मैं बोलता हूँ आप लोगों को जन कि कहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य है ना, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें पर्दे में रह के करना चाहिए, पर्दे में रह के। वो क्या क्या मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र अनुसार बोलूँगा। देखिए पहला कहा गया भोजन, भोजन और भजन। दूसरा है धन और नारी। ये चार चीज हो ना, नारी को और भजन को और धन को और भोजन, ये चार चीजों को पर्दे में रह के करना चाहिए। देखिए एक वो नवयोगेंद्र स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे अपनी कथा में कि जब प्रभुपाद जी को वृंदावन में भोजन मतलब प्रसादम निकाल के देते थे, तो कमरे में जाके देते थे प्रभुपाद हाउस में, तो प्रभुपाद जी कहते थे अब प्रसाद दे दिया ना, अब ठीक है, अब तुम निकलो यहाँ से, अब मैं अपना आराम से खाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं खाना चाहता। वो कभी कभी खाते थे। तो ये प्रभुपाद जी मतलब ने कहा भी कई लोगों को कि भोजन जो है ना वो अकेले में एकांत में करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया धन। धन भी का क्या है ना कि ज़्यादा हमें धन दिखाना नहीं चाहिए। ज़्यादा हम धन दिखाएंगे तो क्या होगा कि लोगों की मतलब कि लोग ना उस पर मतलब कि नज़र लगा देंगे, नज़र लगा देंगे कि मतलब कि चोरी हो जाएगी, लोगों का चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा धन भी हमें नहीं प्रकट नहीं करना चाहिए। दान दक्षिणा करें तो दो ही तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हो गया तीसरा कहा गया है भजन। भजन को भी हमें क्या है ना कि मतलब कि हमें ज़्यादा भजनानंदी बन के किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत भजन कर रहे हैं। भजन करो एकांत में ही करो, कि किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हम हाँ हम भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा इतना भजन कर रहे हैं, हमारा इतना माला होता है, 64 माला करते हैं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं करने की। अपना एकांत में अच्छे से भजन करूँ, ये भजन हो गया, ठीक है, एकांत में करना चाहिए, ऐसा कहा गया है ज़्यादातर। और लास्ट में क्या है, स्त्री, स्त्रियों को ना हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, ये तो नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं, बट आजकल की स्त्रियां तो ये स्वीकार नहीं करेंगी ना, उनको जाके अगर आप ये कह दें तो फिर तो क्रोधित हो जाएंगी, क्रोध करेंगी कि अरे ये आजकल के ज़माने में 2020 में स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, ऐसा ऐसा कह रहे हैं क्या, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन सत्य ये है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का शरीर, जैसे का स्त्रियों के शरीर की जो बनावट है ना, वो पुरुष को ना आकर्षित करती है, ये तो आकर्षित करती है ना, और ये स्त्रियों को भी पता है। अब बोलूँ आजकल की स्त्रियां तो जानबूझ के ऐसा करती है ना आकर्षित करने के लिए ऐसा, अभी तो वृंदावन में ठीक भी है, मतलब गांव वगैरह में, लेकिन शहरों में क्या है, अब मैं पुणे में था, शहरों में और दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ का हाल तो बहुत बुरा है, स्त्रियाँ जिस हिसाब से रोड पे चलती है ना, हम लोग के चलने लायक नहीं है, ब्रह्मचारियों के शैपरन कपड़ा में पहन के या वाइट में हम लोग रोड पे चढ़े तो जाहिर है माइंड तो इधर उधर भटके गई ना हम लोग का। स्त्रियों को इसलिए कहा गया है पर्दे में ही रहना चाहिए ज़्यादातर, ऐसा ही है, लेकिन स्त्रियाँ स्वीकार नहीं करती, ये वो अलग बात है, ठीक है। बाकी जो वैष्णवी माता जी लोग होती हैं वो लोग तो अच्छी हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो तो चित्रकेतु महाराज जो हैं, चित्रकेतु महाराज भी जब आए अपने विमान से, उनको शंकरचरण भगवान ने विमान दिया, देखिए तो विमान से जब वो उतरे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कथा वगैरह चल रहा है, भगवान शिव जी कथा कर रहे हैं और एक बाएं भाग पे भगवान पार्वती जी को, मतलब माता पार्वती जी को विराजमान किए हैं, बाम भाग बाएं साइड में बैठाए थे शायद, तो बैठाए थे। तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो शिव जी हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए थोड़ा सा बोल दिया तो शिव जी को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन पार्वती जी को तो बुरा लग गया ना, तो वो बाद में वो श्राप दी थी, वो श्राप आगे जो भक्त होंगे वो वर्णन करेंगे, तो राक्षस बनने का, तो फिर पूर्व अगले जन्म में वो बने थे वृतासुर। तो मैंने एक पद्म पुराण में एक कथा है, तो उस कथा को मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा कि शिव जी ने यानी शंकर भगवान ने क्यों पार्वती को बैठाया अपने वाम भाग पे, मतलब बाहने के वाम भाग पे क्यों, जांग पे क्यों बैठाया था पार्वती को, तो इसकी एक कथा है कि क्यों बैठाया गया था, पद्म पुराण में ये है। मैं तो दरअसल कथा ये है ना कि एक बार शिव जी क्या कर रहे थे कि भगवान का प्रसाद मिल गया, उसको कृष्ण प्रसाद मिल गया, तो प्रसाद पाते पाते अपना कैलाश लोक में आ रहे थे, तो आ रहे थे बहुत आनंदित थे, आनंद में थे वो, तो पार्वती जी ने देखा तो उन्होंने कहा अरे आज तो आप बहुत आनंदित लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ विशेष हुआ है क्या, तो कहा विशेष क्यों नहीं हुआ, आज मुझे कृष्ण प्रसाद मिला, आज मुझे भगवान ने प्रसाद दिया। तो पार्वती जी कह रहे अरे वाह, जब प्रसाद की बारी आई तो अकेले अकेले आप खा लिए और मुझे पूछे भी नहीं, तो आप तो बहुत स्वार्थी हैं, आपको पूछना चाहिए हमें। तो भगवान ने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हें प्रसाद, भगवान कृष्ण के प्रसाद में इतनी रुचि है, चलो ठीक है रुचि है तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, अगली बार जब प्रसाद मिलेगा ना तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, फिर थोड़ा समय भी था, फिर नेक्स्ट टाइम प्रसाद मिला भगवान जी को, कृष्ण प्रसाद मिला शिव जी को, शंकर भगवान को। तो शिव जी आए प्रसाद लेके, अरे मेरी अर्धांगिनी पार्वती को भी देना है, तो प्रसाद लेकर के आए, तो उन्होंने आवाज लगाई कि पार्वती आओ प्रसाद लेके आया हूँ मैं, आओ प्रसाद पाना है ना, तुमने कहा था कि प्रसाद मेरे लिए लेके आना, तो मैं लेके आया हूँ। तो पार्वती ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद रख दो, हम बाद में पालेंगे ऐसा कहा, तो ऐसा कहा कि पालेंगे, रख दो। तो भगवान थोड़ा अजीब लगा, अरे तुम तो अभी कह रही थी उस दिन कि प्रसाद अकेले खा लिए, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं रख दो हम खा लेंगे, ऐसा क्या हो गया कि अभी रख दे हम खा लो, तुमको तो दौड़ के आना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा मैं विष्णु सहस्त्र नाम, वो पाठ करती थी रेगुलर, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, तो वो कह रही मैं पाठ की तैयारी कर रही हूँ और मैं बिना पाठ किए प्रसाद नहीं पा सकती, मेरा ये व्रत है, ये मैंने व्रत का वो लिया है। मतलब कि मैं कुछ पाऊंगी नहीं अभी, तो आप रख दो मैं पालूंगी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, कि अच्छा ऐसा है कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक ऐसा नाम बताता हूँ कि जो विष्णु सहस्त्र नाम तुम जितनी बार लोगी, उस एक बार वो नाम लेने से तुम्हारा विष्णु सहस्त्र का नाम का फल मिल जाएगा। तो पार्वती जी, क्या अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं आती हूँ, नाम भी हो जाएगा तुरंत और प्रसाद भी मिल जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, पार्वती जी आई तो भगवान ने श्लोक बोला। वो जानते हैं, ये पद्म पुराण में श्लोक भी है कि वो क्या श्लोक था। हाँ, राम रामेति, राम रामेति रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तथा तुल्यम नाम नाम राम नाम वरानने, ये श्लोक है। क्षमा करें, मुझे स्मरण नहीं इसलिए। तो ये श्लोक को जब बोला तो सीता मैया ने, वो सॉरी पार्वती मैया ने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती मैया ने राम का नाम लिया एक बार, और फिर उसके बाद प्रसाद पा लिया। तो फिर जानते हैं शिव जी के मन में थोड़ा सा क्या वो है ना, थोड़ा सा मतलब कि वो स्त्री है ना, थोड़ा सा खटपट था कि अरे क्या हुआ, पता नहीं इन्होंने, इसके मन में कहीं ये संशय ना हो कि भगवान ने मेरा कि सहस्त्र नाम का व्रत भी खंडित कर दिया, पता नहीं एक नाम से विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता भी है कि नहीं, ये प्रसाद खिलाने के लिए हमें कुछ भी पढ़ा दिए। तो ये भगवान को थोड़ा संशय हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, पार्वती के मन में आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म रूप से भगवान शंकर भगवान पार्वती के हृदय में प्रवेश किए चेक करने के लिए। भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हृदय में प्रवेश करें या कहीं, वो तो हर जगह है। भगवान शिव कोई साधारण नहीं है। वो भगवान के प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कई जगह कि भगवान शंकर भगवान, भगवान कृष्ण, मतलब कि भगवान के ही समान है वो, भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं, भगवान के समान है वो, ऐसा कहा है। तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। तो भगवान राधा, तो पार्वती के हृदय में जाना क्या है, वो तो उसकी पत्नी भी वैसे भी। तो उनके हृदय में जाके उन्होंने एक ही कोने को देखा कि देखता हूँ कहीं कुछ है कि नहीं, कुछ संशय तो नहीं है। तो कहीं देखा तो कहीं मिला ही नहीं, कोई संशय नहीं था। वो पार्वती जी, मतलब उनको भगवान के वाक्य पे पूर्ण विश्वास था कि इन्होंने कहा एक नाम तो एक नाम मैंने लिया तो मेरा पूर्ण हो गया, पूरा पूर्ण विश्वास था। और फिर उसके बाद प्रसाद पे भी पूर्ण विश्वास था, हाँ कि भगवान ने का प्रसाद है ये, कृष्ण प्रसाद है। तो ये जब हुआ ना इनके साथ, मतलब शंकर भगवान को बहुत मतलब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए वो कि पार्वती जी को मेरे पर इतना विश्वास है। क्योंकि थोड़ा सा होता है संशय होता है, हल्का फुल्का हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने ऐसे कई घटनाएं किए हैं। अब वो मैं ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकता, इस वजह से शंकर भगवान ने थोड़ा सा ऐसा चेक किया। तो फिर इतने खुश होकर उन्होंने ये उनको वरदान दिया था कि मैं आज के बाद तुम्हें अपने वाम भाग पर विराजमान करता हूँ, मैं आपको अपने वाम भाग पे विराजमान करता हूँ, सदा आप मेरे वाम भाग पे रहेंगे। इसलिए तो उनको अर्धेश्वर भी कहा जाता है ना, आधा भगवान आधा वो स्त्री के रूप में, आधा शिव जी, मतलब आधा पार्वती आधा भगवान शंकर। तो इस वजह से उन्होंने उस दौरान उस कथा में पार्वती को बैठाया था, तो कोई वो नहीं है। ये बात तो चित्रकेतु महाराज नहीं समझ पाए ना, लेकिन वहाँ जो संत महात्मा भक्त थे, बड़े बड़े नारद मुनि व्यास देव जी सब थे, उनको ये बात पता था। तो वो कोई नॉर्मल कोई नहीं, चित्रकेतु महाराज को नहीं पता, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मतलब कुछ बोल दिया, ऐसे मतलब आश्चर्य व्यक्त कर दिया, अरे शिव जी भी ऐसा कर सकते हैं क्या। वो क्यों करना भी जरूरी था ना, मतलब जरूरी था कि नहीं, लेकिन क्या हम लोग को सिखाने के लिए किया गया है ना, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता ना तो क्या होता। प्रभु जी कल कथा में कह रहे थे, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होते, आजकल भी कथावाचक अपनी अपनी पत्नी को या तो कम से कम अपने वांग भाग पे नहीं तो कम से कम अपने व्यासाशन के बगल में तो बैठा ही सकते थे, ये व्यासाशन के साथ ही तो बैठा ही सकते हैं ना। वो चीज़ आगे हम लोग ना करें, इसलिए ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की है। भगवान चित्रकेतु ने कोई अपराध नहीं किया, शिव आश्चर्य व्यक्त किया। अब वो शिव जी को शंकर भगवान तो जानते थे, उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन पार्वती जी को बुरा लग गया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, तो ऐसे श्राप दे दिया, तो श्राप वो तो आगे वर्णन किया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्षमा करिए मैं वर्णन कर देता हूँ कि पार्वती ने जब श्राप दिया ना, तो पार्वती जी जब भगवान शंकर के शिव जी के पास वहीं पे तो थे ना, आए आए तो वो कह रही आपने कुछ बोला नहीं, आप क्यों नहीं बोले? तो कह रही मैं क्यों बोलूं, आपने तो बोल दिया ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो शंकरेश्वर भगवान का शुद्ध भक्त है, वो चित्रकेतु महाराज है, वो चाहता तो आपको ही पलट के श्राप दे सकता था, आपने कहा राक्षस बन जाओ तो वो आपको कह देता जाओ तुम कुत्ता बिल्ली बन जाओ, तुमको आप मतलब पार्वती को कुत्ता बिल्ली, अब तुमको कुत्ता बिल्ली बना सकता था, ये इसका ये कहा गया है आगे, कुत्ता बिल्ली आपको भी बना सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा उनको, क्योंकि क्या क्यों नहीं कहा, क्यों, क्योंकि क्या है ना कि भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो या तो मनुष्य की योनि में रहे या राक्षस की योनि में रहे या जानवर की योनि में रहे या नरक में रहे या स्वर्ग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको सिर्फ भजन से मतलब है, भजन कहीं भी रहो भजन होता रहे, भगवान के नाम लेते रहे एकदम अच्छे से भगवान का भजन होता रहे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। और शिव जी ने ये भी कहा ना कि वो तो हमारा एक, हम लोग तो उनके पिता हुए ना, शंकर भगवान तो पिता के समान है, जगत पिता है भगवान शिव जी, तो ये बताइए कि अगर बच्चे ऐसी त्रुटि करते रहे और हम उसको श्राप देते रहे, अरे ये बच्चे ने ये त्रुटि किया इसको श्राप दे दें, इसको श्राप दें, तो बच्चे तो त्रुटि करेंगे ना, अगर मैं उनको श्राप देता रहा आप और मैं, तो बच्चों को तो कहीं ठिकाना नहीं रहेगा ना, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर श्राप देते रहेंगे, तो इसलिए ऐसे वो आगे वर्णन करेंगे जो भी भक्त रहेंगे, तो इसलिए शिव जी ने कुछ नहीं, फिर पार्वती जी को भी थोड़ा पछतावा कि हुआ कि हमें नहीं बोलना चाहिए था मगर बोल दिया, तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं चलो ठीक है। तो ये कथा चित्रकेतु महाराज की ये वर्णन है। देखिए अब क्या है ना कि इसमें लिखा है तात्पर्य में कि महाव्रत धरह शब्द ब्रह्मचारी, यानी ये शिव जी के बारे में वर्णन है। तो पहले क्या करते हैं ना, देखिए भागवत के मतलब कि भागवतम के 11वें स्कंद में एक श्लोक है, आप लोग वो श्लोक जानते होंगे शिव जी के बारे में, वो श्लोक क्या है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवो नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम यथा, यानी कि समुद्र की ओर बहने वाली जो नदियां हैं तो उसमें सबसे पवित्र कौन है, गंगा है, गंगा है ना, और देवो नाम अच्युतो यथा, यानी कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे उच्च कौन है, भगवान कृष्ण अच्युत, अच्युत यानी कृष्ण होता है ना, अच्युत कृष्ण है, तो वैष्णवानाम यथाशंभु, वैष्णव में शिरोमण कौन है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, शंभु भगवान शिव, शिव जी हैं, भगवान शिव है ना, वो भगवान के समान है, तो वैसे ही कहा है पुराणा नाम, नहीं पुराणा नाम इदम यथा, यानी कि पुराणों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो कितने पुराण है, 18 पुराण है, जिसमें में कि 6 रजोगुणी है, 6 सतोगुणी, 6 तमोगुणी, ये पुराण है, तो सतोगुणी में भागवत मतलब 6 पुराण में से एक भागवत पुराण आता है, तो ये भागवत पुराण जो है सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, ये 11वें स्कंद में दिया गया है, तो कृष्णा 11वें स्कंद में ये दिया गया है, तो वैसे शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण, तो इसके बारे में एक जैसे भागवत पुराण क्या है, ये है ना कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष मतलब एक वृक्ष है, वे वृक्ष कौन है, भागवत वृक्ष नहीं है, भागवत क्या वो पेड़ है, यानी वृक्ष है, मतलब कि वेद जो होते हैं ना, वेद 4 वेद, इसको वृक्ष कहा गया है, भागवत को वृक्ष नहीं कहा गया है, वेद जो वृक्ष है, अब वेद में से एक पका हुआ फल, यानी वृक्ष में से एक जो पका हुआ फल है उसको भागवत कहा गया है, भागवत ये पुराण है, ठीक है, तो ये पुराण है भागवत, ठीक। तो फिर उसके बाद ये भगवान शिव जी का ये वर्णन है कि भगवान शिव कौन है, भगवान के समान है वो, शंकर भगवान है, ठीक है। तो भगवान ऐसे चित्रकेतु महाराज ने आश्चर्य प्रकट किया, तो फिर ऐसे वर्णन है, फिर तो देखिए दरअसल क्या है ना कि जो हमारे आचार्य हैं या जो संत भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हो गए और भी अन्य भक्त हो गए, तो इन ये लोग क्या है ना, देखिए प्रचार प्रचार होता है ना, प्रचार का अर्थ क्या होता है? देखिए शिव जी वहां पे बैठ के क्या कर रहे थे, वो प्रचार ही तो कर रहे थे ना, एक तरीके से प्रचार कर रहे थे। देखिए व्यास देव, नारद मुनि और भी कई अन्य ऋषि थे, तो इन लोग को भी लेक्चर देना आवश्यकता है, आवश्यक है ही, ये लोग कथावाचक है तो क्या देना आवश्यक है, तो क्योंकि शिव जी से बड़ा तो कोई कथावाचक नहीं हो सकता ना। तो प्रचार का अर्थ क्या है ना, कि हमें आचरण से, अपने आचरण से प्रचार करना है, आचरण से। तो वो क्या है ना, चित्रकेतु महाराज को थोड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये तो कथा कर रहे हैं लेकिन इनका आचरण थोड़ा सा, ये स्त्री को बैठाए हैं, इसलिए उन्होंने कमेंट कर दिया, आचरण से प्रचार करना है हमें। तो ये गलत तो पता नहीं गलत था कि सही, जो भी, वो तो भगवान की इच्छा अनुसार, वो आगे की कथा और भी जब भगवत लोग वर्णन करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये आचरण से प्रचार हमें करने के लिए उन्होंने भगवान चित्रकेतु महाराज ने ऐसा शंकर भगवान को कहा। ठीक है, देखिए आचरण से देखिए, एक हम लोग ने एक लीला आगे वर्णन आएगा, समुद्र मंथन की लीला सुनी होगी आपने, आगे आएगा। तो समुद्र मंथन के समय क्या होता है ना, देखिए क्या दरअसल क्या है, आचरण से इसलिए कहा गया ना क्योंकि शिव जी के भक्त, देखिए शिव जी के जो उपासक होते हैं ना, वो अभी के जो उपासक हैं शिव जी के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे कि नशा करते हैं, भांग वगैरह खाते हैं और भी कई प्रकार के नशा करते हैं, कुछ ऐसे हुक्का उक्का पीते हैं, तो वो सब करते हैं। तो उन लोग ऐसा करते हैं, तो उन लोग का कहना है कि जो शिव जी कर सकते हैं वो, मतलब जो मतलब कुल मिला के हमें शिव जी का क्या करना, अनुकरण करना है या अनुसरण, हमें बल्कि शिव जी का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। जो शिव जी ने किया है या संत भक्तों ने जो किया है वो हमें करना नहीं है, बल्कि वो हमें जो उन्होंने कहा है वो हमें करना है। जैसे कि भगवान कृष्ण भगवद्गीता में क्या है, भगवद्गीता में और भी ऐसे कहा है, भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, करना नहीं है, बल्कि गीता में जो कहा है उसे हमें करना है। रामायण की बात अलग है, रामायण में जो भगवान राम ने किया है वो हमें मगर करना है, ठीक है ना, लेकिन और ऐसा नहीं। तो भगवान शंकर भगवान के अनुयायी या हम लोग अगर जाकर आगे जाकर ऐसा ना करें, इसलिए ऐसा वर्णन किया गया है। तो समुद्र मंथन में एक कथा आती है कि भगवान, देखिए ऐसा हम कह सकते हैं ना, कोई अगर कहेगा कि अरे नहीं भगवान ने जो किया है, शंकर भगवान ने किया वो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनके अनुयायी लोग ऐसा करते हैं, शिव जी के अनुयायी, कि वो नशा करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो जैसे समुद्र मंथन में कथा आपने सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष निकला था, बहुत मतलब खतरनाक विष था, अरे पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच गया था, अरे विष जब निकला उसकी एक बूंद भी उसकी कोई सही नहीं पा रहा था, इतना खतरनाक विष था, कालकूट ऐसा कुछ वृक्ष का विष का नाम था। तो उस विष को अब देवी देवता सोचने लगे, अरे मैं किधर जाऊँ, राक्षस भी मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। तो भगवान वो विष्णु जी के पास गए, तो भगवान ने विष्णु ने कहा ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं, अब शिव जी के पास जाओ, उनको दिया गया है, शंकर भगवान के पास जाओ। तो शंकर भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना किए, भगवान मेरी हम लोग की मदद करिए, ऐसे ऐसे हम क्या करें, इसमें तो हम लोग सोच रहे थे कुछ अच्छा निकलेगा, अरे इसमें से तो विष निकल गया, हम लोग मर जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा समुद्र मंथन करके, कुछ अच्छा नहीं निकला। तो फिर कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो भगवान शिव ने क्या किया, फिर उस विष को पान किया ना, तो उस विष को पान किया, तो फिर उन्होंने उस सारे विष को अपने कंठ में ही रख लिया, तो इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। तो भगवान विष थोड़ा क्या आता है, आपने देखा होगा कई लोग जब विष पी के, जैसे सांप को काट ले या कुछ जहरीला विष अगर कोई जानवर काट ले तो उसका शरीर नीला हो जाता है, तो भगवान का भी कंठ नीला हो गया क्योंकि विष धारण किया ना, तो इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो नीलकंठ, तो ऐसे ही हम उनको कह सकते हैं कि भगवान ने तो ऐसे भी किया, आप कर सकते हैं क्या, विष पी के तो दिखाइए, ऐसे कह सकते हैं ना। तो ये सब भगवान ने भागवतम में और भी अन्य पुराण में उदाहरण दिया है गया है कि कुल मिला के हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं अनुसरण। ये तो भगवान ने कहा भी है, कहा हुआ लोग नहीं मानते ना, बात तो ये ना, उनका किया हुआ मान रहे कि हाँ वो कहें जैसा कहें वो करूँगा, अब वो कहें तो वो नहीं करूँगा, ऐसा वो बात की बात है, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो भगवान क्या है ना, भगवान शिव जी है ना, शंकर भगवान, वो ना भगवान शिव जी का वर्णन शंकर भगवान के बारे में इसमें इस श्लोक में लिया गया, तो उसका थोड़ा सा वर्णन तो करना ही पड़ेगा ना। कि देखिए वो ना शंकर भगवान के अंदर कई पार्वती जी को वाम भाव पे रखे थे, तो कई लोग कह सकते हैं ना अरे ये तो मतलब कि कामी पुरुष हैं, कह सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं कह, अगर ऐसा चित्रकेतु महाराज या और भी आगे कथाएं नहीं होती तो कह सकते हैं ये कामी पुरुष हैं, स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते, इन्होंने अपने वाम भाग पे स्त्री को बैठाया, देखो आलिंगन भी किया है। तो वो हो सकता है कि चित्रकेतु महाराज आके नहीं बोलते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लोग कह सकते हैं ऐसा। तो लेकिन क्या है ना कि लोग भगवान को कामी पुरुष कह सकते थे, तो इसलिए देखिए, लेकिन है नहीं शिव जी। देखिए एक एग्जाम्पल में आपने सुना होगा भागवत के में दसवें स्कंद में या कहीं कथा है कि ये कि काम, देखिए शिव जी जो है ना वो काम काम के शत्रु हैं, वो सही में हैं, वो कामदेव के शत्रु हैं, उनके पास काम आ ही नहीं सकता। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ कि कोई कि पार्वती जी तो बार बार आती जाती हैं, मतलब उनका शरीर छोड़ता है, तो पार्वती जी का शरीर छोड़ गया तो भगवान शिव जी ने कहा कि चलो फुर्सत मिला आप गृहस्थी में हमें फंसना नहीं पड़ेगा, अपना आराम से भजन करूँगा। तो वो भजन करते हैं अपना, तो लेकिन क्या हुआ ना कि एक कोई असुर थे, तो वो असुर को ये वरदान था, भगवान ने ये वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र से ही मैं मरूँ, ऐसा वरदान था, आपके पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो ऐसा। तो क्या हुआ कि वो असुर पूरा मतलब पूरा हर जगह देवी देवताओं को परेशान करने लगा, मनुष्यों को परेशान करने लगा। तो देवी देवता क्या कामदेव के पास गए, वो भगवान भजन कर रहे थे ना, तो उनको उठाने की सामर्थ्य नहीं है ना किसी में, शिव जी में, देवी देवता के पास गए तो उनके पास जाकर के कहा कामदेव को कि आप जाओ उनके उनके वहाँ पे ऐसा वातावरण वो करो ना कि वो काम उनके अंदर थोड़ा उत्पन्न हो तो वो विवाह करें, क्योंकि वो सती एक जगह वो क्या कहते हैं अवतरित हो चुकी थी, विवाह करना था, लेकिन शिव जी इस झंझट में नहीं फंसना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कामदेव जी ने कहा नहीं 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 मैं नहीं जा सकता, भगवान तपस्या कर रहे हैं, मैं उनको भस्म करने क्या जाऊँ, वही मुझे भस्म कर देंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो देवीदेव इंद्रदेव तो जानते हैं इंद्र की क्या हाल है, इंद्र ने कहा अगर तुमने नहीं उसके पास अगर आपने जाके नहीं भस्म किया तो मैं इधर से आपको मार दूंगा, भस्म आपको मैं भस्म कर दूंगा। तो फिर कहा चलो ठीक है, मैं एक बार मैं ही अब इनके इंद्र के हाथ से कौन भस्म, मैं जा रहा हूँ शिव जी के ही क्रोध से भस्म हो जाऊँ, ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो गए, तो जा करके फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना वातावरण ऐसा किया कि भगवान काम के वश में थोड़ा सा है, मतलब कि वश में क्या भगवान काम के वश में थोड़ा ऐसा वो लीला है भगवान की। तो फिर क्या हुआ नहीं हुए, कुछ हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उन्होंने अपना लास्ट का जो अस्त्र है काम अस्त्र, वो बहुत डेंजर होता है, उसको छोड़ा, तो उस वजह से भगवान की तपस्या थोड़ी भंग हो गई, वो वश में नहीं आए, भंग हो गई तपस्या, उनको क्रोध आया और उन्होंने उसको भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। तो देवी देवता आया, अरे भगवान क्या किया आपने, ये तो हम लोग ने ऐसी ऐसी लीला की थी कि आपकी आप विवाह कर लें तो असुर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो विवाह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका एक पुत्र होगा और पुत्र से उस असुर का नाश होगा। तो भगवान शिव जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे भजन करना चाहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों की खुशी के लिए आपके दुख को नहीं देख सकता मैं, क्योंकि क्या ना वैष्णव उन्हीं को वैष्णव का अर्थ क्या हुआ, वैष्णव वो हुआ ना कि जो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो और दूसरों के आनंद को देख के आनंदित हो, वो वैष्णव कहलाते हैं ऐसे। तो भगवान इसलिए भगवान ने ऐसा किया कि आप मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं गृहस्थी में नहीं फंसना चाहता लेकिन आपके दुख को मैं देख के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है मैं विवाह कर लेता हूँ। विवाह किए, फिर कार्तिकेय जी आए, फिर कार्तिकेय जी ने वो ससुर को मारा, ये शिव जी का ऐसा एक लीला है, शिव जी ने ऐसा किया। तो जैसे कि आपने वो सुना होगा कि इंद्र, इंद्र के बारे में देखिए, ये तो इंद्र इंद्र का थोड़ा उल्टा वो है, उल्टा इंद्र क्या है, इंद्र का स्वभाव अलग है थोड़ा सा, वो उनका ना अरे बोलने कि उनका स्वर्ग की कि जो अप्सराएं उनसे मन नहीं भरता तो वो जमीन धरती पे आ जाते हैं, द पृथ्वी पे आ जाते हैं। वैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आपने कथा आगे रामायण में दिया है, वाल्मीकि रामायण और भी कई जगह पे, कि जब इंद्र आए थे इस श्लोक में तो पृथ्वी पे, तो वहाँ पे अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, तो अहिल्या के पास आए तो इंद्र ने क्या किया कि वो मुर्गा होता है ना मुर्गा, तो मुर्गे में थोड़ा सा ये खासियत है ना कि वो 3-4 बजे जगा देता है, उसके अंदर ऐसी खासियत है। तो उन्होंने मुर्गे से कहा तुम जाओ ऐसा माहौल कर दो, मतलब आवाज़ करो कि 4 बजे का आवाज़ जो तुम करते हो वो अभी जाके करो। और फिर चांद को कहा कि तुम चांद को कि 4 बजे जहाँ आप स्थित रहते हो वहाँ पर चले जाओ। तो ये दोनों काम हो गया। अब इंद्र तो देवताओं के राजा हैं तो जाहिर है वो तो चांद को कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा फिर किया, फिर करने के बाद क्या हुआ कि ये आए, कौन आए, इंद्रदेव आए रूप बदल के, गौतम ऋषि का रूप बदल के आए या फिर थोड़ा सा संग किए कि नहीं जो भी हो, थोड़ा सा ऐसे उनको स्पर्श वगैरह किए। फिर उसके बाद गौतम ऋषि जब गंगा जी नहाने गए तो गंगा जी में जब पैर स्पर्श किया तो गंगा माता ने कहा अरे आप इस समय अभी क्यों आए, अभी तो समय नहीं हुआ है। तो कर अरे समय तो हो गया। तो गौतम ऋषि को फिर गंगा जी ने कहा नहीं 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 आपके साथ छल हुआ, आप जाके देखो आपके साथ छल हुआ है। जब ये आए तो देखा गौतम एक और गौतम ऋषि, अरे मैं गौतम ऋषि, एक और गौतम ऋषि कहाँ से आ गया। तो वो डुप्लीकेट गौतम ऋषि थे। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, तो समझ गए ये इंद्र है। तो फिर इंद्र तुमने कहा इतने कामी पुरुष हो तुम, मतलब स्त्रियों के लिए तुम स्त्री को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इतने कामी, जो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पे योनि बन जाए, जो माताओं की योनि होती है वो बन जाए। तो फिर ऐसा हो भी गया। तो फिर इंद्र कहे क्षमा मांग ले गए, क्षमा कर दीजिए, ये तो बहुत घृणित काम मतलब है मैंने किया और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर उनको कहा ठीक है तुम्हारे शरीर पर आँख जो होते नेत्र आँख आ जाएंगे, तो फिर आँख आ गए। फिर उन्होंने इनको भी श्राप दे दिया अहिल्या को, इनको इसलिए श्राप दिया ना जरा चल अब जो भी हो। ऐसा कहा गया कि देखिए पतिव्रता जो नारी है ना उसकी ओर कोई गलत दृष्टि नहीं कर सकता, उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, अगर कोई प्रयास भी किया ना तो वो गया काम से, वो भस्म हो जाएगा। तो वो गौतम ऋषि का रूप धर के आए इंद्र, तो अहिल्या को स्पर्श किया और भी जो भी हो, तो इसका मतलब कि यानी कि शायद अहिल्या मतलब कुल मिला के अहिल्या को पता था कि इंद्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर उनको आने दिया। ये गौतम ऋषि ने इस वजह से उनको श्राप दे दिया। कई लोग कहते हैं ना अरे गौतम ऋषि ने ऐसा क्यों किया, श्राप क्यों दिया, वो इसमें उसकी क्या गलती थी, उसको क्या पता था, लेकिन ये है उनको पता था इस वजह से। इसका वर्णन है कई जगह, मैं अपने मन से नहीं, मैंने इसको पढ़ा भी, अपने से अध्ययन किया मैं, तो ऐसा वर्णन है। तो इस वजह से उनको श्राप दे दिया गया। तो ये इंद्र की एक कथा है, ठीक है। तो ये सब वो है अलग है। फिर आपने एक बार देख वो, तो ये है हमारे इंद्रदेव और हमारे वो थे शिव जी, ठीक है। देखिए शिव जी में भी क्या ना, शिव जी भी देखिए लीला वगैरह ये भागवतम ये सब लीलाएं दी हम लोग शिक्षा के लिए। अभी जैसे कि शिव जी भी थोड़ा बहुत ऐसे लीला के लिए ऐसा होता है, थोड़ा काम का ये कि मैं काम में आ गया ऐसा जो भी हो। जैसे कि आप समुद्र मंथन के समय आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत लेके निकले धन्वंतरी जी, अमृत लेके निकली थी ना, तो फिर क्या हुआ कि राक्षस लोग लड़ने लगे मैं पीऊँगा अमृत मैं पीऊँगा। तो भगवान ने सोचा अरे ये तो अमर नहीं है, अमृत नहीं पिए हुए तो इतना दुष्ट हैं, इतना लोगों को सताते हैं, जब अमृत पी लेंगे अमर हो जाएंगे तब क्या करेंगे पता नहीं। तो फिर देवी देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप हमें कुछ करिए, ये धन्वंतरी जी से अमृत कलश लेकर छीन के देवता लोग भाग रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि भगवान मोहिनी का रूप प्रकट किए, भगवान मतलब विष्णु जी, भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप प्रकट किया। फिर उसके बाद वो क्या किए कि देव असुरों के पास गए और उनसे कलश, अरे कहा अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हो रहा है, तुम लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं मैं इसको बांट देता हूँ, मुझे ये कलश दो। अब इतने सुंदर है तो देव असुर लोग मना नहीं कर सकते ना, देवी देवता ने, देवी देवता तो जानते थे कि ये भगवान है, इसलिए उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं था उनको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कलश ले लिया, लेने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अमृत पान कराया इन लोगों को, देवताओं को, और उन लोगों को मदिरा पान कराते, भगवान ऐसा कर रहे थे। तो उसी में क्या है ना, एक असुर था, उसका नाम था राहु। राहु तो जो राहु असुर था, तो उसको वो देख लिया कि भगवान ये हमारे साथ छल हो रहा है। तो वो क्या क्या देवताओं के बीच में चंद्रमा, चंद्र भगवान और सूर्य जी के बीच में आके बैठ गया, और बैठ के आकर के, और फिर पंगत यानी जो लाइन लगी थी पंगत, तो उसमें आके बैठ गया। तो फिर उसको भी अमृत मिल गया, वो पी लिया। तो चंद्रमा और सूर्य बोल दिए भगवान को, अरे ये तो असुर है, ये तो देवता नहीं है। तो फिर अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न उठता है ना कि क्या भगवान ने जब अमृत पान कराया उस राहु को दिया, पी लिया, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को पता नहीं था क्या कि ये राहु असुर है, तो इसको फिर भी क्यों पिलाया? क्या चंद्रमा असुर को कहने की जरूरत थी? क्या जरूरत थी कहने की? बिना कहे भगवान तो जान सकते थे ना, भगवान जानते भी थे, फिर भी क्यों ऐसा किया कि उसके कहने पे ऐसा, यानी भगवान की इच्छा थी क्या कि राहु को वहाँ पिलाए तो अब ऐसे लीला हो? तो जानते हैं इसका मतलब बहुत बड़ा ये वो है, जानते हैं ऐसा कहा गया है ना कि भेद जो होता है ना, भेद नहीं करना चाहिए हमें। भेद यानी कि जब पंगत बैठती है, पंगत जैसे कि पंगत यानी कि अरे जो भोजन के लिए हम लाइन में बैठाते हैं, साधु संतों को खिलाते हैं, तो उस समय ना उस स्थिति में कोई भी जो असुर हो या जानवर हो कुछ भी उस लाइन उस पंगत में आ जाए ना, भेद नहीं करना चाहिए। भेद यानी हमें ये उसके पात ये नहीं देखना चाहिए कि ये इस लायक है या नहीं, है या नहीं, उसको हमें पान कराना चाहिए। तो इस वजह से भगवान ने एक तरह से शिक्षा देने के लिए हमें ऐसा किया, इस वजह से भगवान ने उसको भी वो पान करा दिया, पिला दिया। अब फिर उसके बाद पिला दिया तो राव, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हुआ ये कि भगवान ने उसको चक्र से उस राहु के का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो फिर उसके दो शरीर भाग हो गए, एक मुख हो गया, एक शरीर हो गया। तो इस वजह से उसका नाम एक पड़ा राहु और फिर एक का केतु, यानी कि राहु और केतु। इस वजह से सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है, आप तो जानते ही होंगे सब। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लीला खत्म हुई। फिर उसके बाद शिव जी आए, शिव जी उस समय थे नहीं ना, शिव जी आए और आकर के कहें कि भगवान हमने सुना आप इतनी सुंदर स्त्री बने थे, आप पुरुष हो के इतने सुंदर हैं लोक में, तो फिर स्त्री के रूप में आपका मतलब कि सुंदरते का वर्णन ही नहीं किया जाता, और ऐसे ही वर्णन नहीं कर सकते तो क्या है, मुझे एक बार दिखाए ना। जिद करने लगे बच्चे को, वो तो भगवान के सामने तो बच्चे हुए ना, जिद करने लगे। अरे अरे, तो कह रहे नहीं 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 आप कुछ गड़बड़ हो गया, तो कहा नहीं 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 कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, मैं इतना बड़ा ये हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा भगवान भी थोड़ा शिव जी फेंकने लगे। तो शिव जी कहते हैं अच्छा दिखाता हूँ, आपका ब्रह्मचारी तो बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो विष्णु जी ने अपना प्रकट किया, कौन सा रूप प्रकट किया, मोहिनी का रूप। तो शिव जी देखिए पार्वती जी बगल में हैं, साथ में उनकी पत्नी बगल में, पत्नी साथ में हो और कोई कुछ इधर उधर कर ले, हो सकता है क्या? लेकिन क्या हुआ कि पार्वती जी बगल में, फिर भी उन्होंने क्या किया कि शिव जी भूल गए कि कौन पार्वती कौन शिव, जो कोई शिव नहीं कोई पार्वती नहीं, बस उसको आलिंगन करने के लिए उसके पीछे दौड़, मतलब उसको पकड़ने के लिए वो भागने लगे। अब तो फिर उसके देखिए शिक्षाएं हैं, ऐसा कोई वो नहीं है भागवतम में, सब शिक्षाएं है ना कि जब शिव जी ऐसा हो सकता है तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है, हम लोग कुछ भी नहीं है, फिर हम तो मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब जितना आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ तक हूँ, कितना घृणित हूँ मैं, कितना नीची हूँ, कि जितना सोच सकते हैं कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ, फिर उसके बाद शिव जी ऐसा भागे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक वर्णन है आप लोग जानते होंगे कि शिव जी का और वो मोहिनी का संग भी हुआ था, संग होने पे उसको एक पुत्र हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे। तो उस पुत्र, वो श्राउत में, अभी वो पुत्र का श्राउत में मंदिर है वहाँ पे, ऐसा बहुत वहाँ के लोग अभी जो पुजारी हुए हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग मतलब बहुत तपस्या करते हैं। तो उस पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम पड़ा था अयप्पा, अयप्पा उस पुत्र का नाम। वो अभी भी साउथ में उसका ज्योति है और विग्रह वगैरह भी शायद है वहाँ के लोग ऐसा वो करते हैं बस अयप्पा का। तो ये एक शिक्षाएँ थी देने के लिए, मतलब ये कुल मिला के भगवान शिव जी और ये सब जो लीलाएँ हो रही चित्रकेतु महाराज ने, ये सब क्या, ये सब शिक्षाएँ हैं। भगवान चित्रकेतु महाराज ने कोई अपराध नहीं किया था, ये तो प्रभुपाद जी साफ साफ भागवतम में कह भी रहे हैं, कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने शिव आश्चर्य प्रकट किया। आप कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करेगा तो कोई भी कहेगा ना, कोई भी तो कहेगा अरे इतने बड़े होके आप ऐसा कर सकते हैं क्या, ताकि आने वाले समय में लोग उनका अनुकरण ना करने लगें, बल्कि अनुसरण करना है, उनके बात, उनके कहे हुए बात को हमें मानना है। तो इस तरह से लीलाएँ की थी। तो आज का कथा मैं यहीं विराम करता हूँ, तो टाइम हो गया है। तो किसी को कुछ अगर कमेंट करना हो तो कैसे प्रश्न, तो चलिए कोई श्रीमद्भागवतम की जय।